Ram, 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 Narayan, 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 Narayan. Sant Mahatma Purush koi keh rahe tattva ke jeevan mein वो सुस्ता सुन करके उपासना करते थे भी चार चरण थे विष्णु श्रीपरायण श्रीपरायण वे भी मृत्यु को चल जाते हैं। तो यह अलग अलग साधन बताए परंतु अंत में मृत्यु को चल जाते हैं परमात्मा तो प्राप्त हो जाते हैं फिर पुनर्जन्म नहीं होते इन स्थान को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे अलग अलग कहा। तो अलग अलग प्राप्ति अलग नहीं होती साधन शैली एक अनेक अनेक होती है। नारायण अरुण नगर के रज्जब राह अनेक भावे आवो किधर से आगे अस्त्र एक पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संतदास घड़ी अरठ की ढूंढे एक ही ठोर। तो जैसे यहाँ कोई आना चाहे और वो कहीं उत्तर में रहता है तो उत्तर में रहने वाला दक्षिण में चलेगा और दक्षिण में रहने वाला उत्तर की तरफ से रहेगा पूर्व में रहने वाला पश्चिम की तरफ से रहेगा और पश्चिम में रहने वाला पूर्व की तरफ से रहेगा। तो चाल उनकी अलग अलग होगी कोई पूर्व की तरफ जाता है कोई पश्चिम की तरफ जाता है कोई दक्षिण की तरफ जाता है कोई उत्तर की तरफ जाता है। तो ऐसे जाते अलग देखेंगे तो परंतु अंत में एक जगह आएंगे यही अंत में यही आएंगे। तो अलग क्यों है कि जैसे दिशाओं के भेद से अलग अलग है ऐसे उनकी भावना है श्रद्धा है विश्वास है उसके अनुसार साधन अलग अलग होता है। किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है किसी को ध्यान योग अच्छा लगता है किसी को कर्म योग अच्छा लगता है किसी को संत महात्माओं की आज्ञा पालन की तत्परता होती है। ऐसे साधन अलग अलग है पर अंत में एक जगह हो जाते हैं। जैसे अरहत होता है जिसमें पानी लगता अरहट उसमें वो माला होती है घड़ी 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 रहते हैं ऐसे माला होती है सबकी सब माला। तो वो आती है और वो कुएं में जाकर के उसे ऐसे निकलती है ऐसे तो भर जाती है। तो भरती अलग अलग होती है पर ढूंढती एक ही जगह ही है माला अलग 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 मैया होती है पर ढुलेगी एक ही जगह वहां पानी उसमें ही आएगा उसी वो खेत की तरह ऐसे नारायण और नगर के रज्जव राह अनेक नारायण और नगर के रज्जव राह अनेक भावे आवो किधर से आगे स्तर एक पहुंचे पहुंचे एक मत वो पहुंच गए घड़ी पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और अरघी घड़ी रहती है संतदास घड़ी अर्थ की ढूंढे एक ही ठोर। तो पहुंचने पर एक ही तत्व मिलता है रास्ता उनकी अलग अलग है इस बात से संप्रदाय अलग है गुरु परंपरा अलग है क्यों कि उनकी स्थिति अलग अलग है अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है परंतु ये स्थिति से अंत आकर के होता है वो एक जगह होगा। तो कहीं ज्ञान से भक्ति योग देते हैं भगवान कहीं भक्ति योग से ज्ञान देते हैं दसवें अध्याय में भक्ति से ज्ञान देते हैं भगवान तेसामेव अनुकंपा तुम अहम अज्ञान दम तम ना से हमें आत्मभावस्तु ज्ञान दीजिए न भाषो का और भाषो दे दी मान ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर करता हूँ। और 18वें अध्याय में वो ज्ञान है निष्ठा ज्ञान से यह परा परा ज्ञान की निष्ठा है वो निष्ठा होने पर फिर अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुच निर्मम शांत हो ब्रह्म भूयाय गणपति। अब ब्रह्म भूत हो गया ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोच न कांस भी अरे समस्त सर्वेश भूत मद भक्ति परा मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। तो वहाँ भक्ति मत्सिता मत गता प्रणाई भक्ति की बात आई उसमें ज्ञान देता हूँ और ज्ञान मार्गदर्शन से उसको परा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिया माम अभिजानाती अभिजानाती यावान यस्त आश तत्व तत्वमान तत्व तो गया थोड़ा विशेष अंतरम। ये मार्ग अलग अलग है परंतु प्रापणीय तत्व एक है, इसमें तात्पर्य है इसका। इस बार से भिन्न भिन्न बनाया, सब बात ठीक है।
अरे ज्ञानियों की सद्यो मुक्ति होती है,
हाँ,
और भक्ति योगियों की क्रम मुक्ति होती है।
हाँ, हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक की प्राप्ति होने बात एक है, सद्यो मुक्ति ज्ञान योग कर्म योगी की होती है, ऐसे ही ज्ञान योगी भी की भी कर्म मुक्ति होती है। जैसे परमात्मा अब ये ज्ञान योग में चलते हैं, चलते चलते पूर्णता नहीं हुई, कमी रह जाती है, तो वे ब्रह्म लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक में जाकर और फिर वहां ब्रह्मा के साथ में मुक्त होते हैं, तो उनकी भी कर्म मुक्ति होती है, जो पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी ज्ञान योग में। ऐसे भक्ति योगी भी पूर्ण प्राप्ति यहाँ नहीं होती तो क्रम मुक्ति होती है, नहीं तो इनकी भी सद्यो मुक्ति हो जाती है। भक्ति में भी जब भगवान तत्व ज्ञान दे दे तो सद्यो मुक्ति में क्या बाधा रहेगी। भक्ति में उसे ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान योग से भक्ति मिल जाएगी, तो पूर्णता होने पर सद्यो मुक्ति सबकी हो जाती है, और क्रम से उनको तो क्रम से हो जाती है। कर्म मुक्ति दोनों नहीं होती है, सद्यो मुक्ति दोनों होती है।
कर्ण निरपेक्ष हो जाता है,
कर्ण निरपेक्ष साधन, हाँ, कर्ण तत्काल होता है। कर्ण निरपेक्ष साधन तो ऐसी विलक्षण बात है कि वो तत्काल ही हो जाता है, उसमें दो भेद नहीं होते, कर्म मुक्ति नहीं सद्यो मुक्ति होती है उसमें। तो देखो अब ध्यान से सुने आप, ये कर्ण सापेक्ष होने से ही क्रम मुक्ति होती है, और कर्ण निरपेक्ष होने से सद्यो मुक्ति होती है। अब उसकी कोई चाहना ही भगवान की विशेषता हो, भगवान के धाम की चाहना होगी, तो वो भगवान धाम में जाएगा। बात खास बात है, अब उसमें समझ में क्या नहीं आता है वो बताओ। हाँ, हाँ, तो अपने नहीं तो हमें जो परमात्म तत्व की जिज्ञासा है वो जोरदार नहीं है, जोरदार नहीं है। वो कमी रहती है सद्यो मुक्ति में अथवा कर्म निरपेक्ष साधन में फर्क नहीं है, परंतु साधक के जब तक संसार के भोगों की और संग्रह की या दो की विशेष धुन रहती है ना, पदार्थ संग्रह करना, रुपया संग्रह करना, इकट्ठा करना, एक तो ये, और एक अपने संग्रह की और एक सुख भोगों की, इन दोनों की इच्छा होने से वो परमात्म तत्व में एक जगह पहुंच जाए, इसमें मुश्किल होती है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग तो सुख भोगना, ऐश्वर्य संग्रह करना, वैभव संग्रह सामग्री, वो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में प्रसन्न है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम अर्थयाभृत्यम वो पुष्प चाम वासम प्रबंधन तीसरे प्रकरण आया है, उस पुष्प वाणी से जिसका चित्त अभृत हो गया है, माने यहाँ के भोगों की इच्छा है, इसमें स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा है जिनकी, और भी भगवान देखने की यहाँ संग्रह करने की इच्छा है, तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम अर्थयाभृत्यम उस वाणी पुष्प से जिस अभृत हो गया है, तो व्यवसायत्मक बुद्धि समाज होने व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक नहीं होती। आप कहते हो सबको एक से क्यों नहीं होते, निश्चय बुद्धि न होने में भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है भीतर, वो बाधक है, इस वास्ते एक निश्चय नहीं होता उसका। अभी अगर भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा सर्वथा उठ जाए तो कर्म निर्वृत्त तत्काल होता है, उसी क्षण अभी हो जाए, किसी क्षण ये साथ में रहे तब तो व्यवसायी आत्मिक बुद्धि समाध हो न किसी जैसे तनिका व्यवसाय बुद्धि एक एक पर एक होती है व्यवसाय बुद्धि बहुत सकता बुद्धि अव्यवसाय ना वो व्यवसाय पूरा पक्का नहीं है। अब जो सूर है चारो बजते मा मन भाग साधु ये वह समन्तव्य है अनेक भाग बोलता है वो साधु मानना चाहिए क्यों मानना चाहिए दुराचारी से दुराचारी है अनन्य भाव से भजन करता है भजन में अनन्य भाव है तो साधु मानना चाहिए क्यों के सम्यक व्यवसाय तो व्यवसाय सम्यक हो गया निश्चय उसका पक्का हो गया और ये व्यवसाय बुद्धि नहीं होने में कारण है भोग और ईश्वर में आसक्ति इस बात तत्काल नहीं होता वो आसक्ति नहीं हो तत्काल हो जाए सुनने मात्र से हो जाए एकदम कर्म निपुष ऐसी विलक्षण बात है। अब एक बात और बता रहे जैसे भोग ऐसी आसक्ति है ना तो इसमें क्या कारण है वो जो आज ध्यान दे रहे आप लोग सुने जैसे आपने कोई भोग भोगा है आपको विशेष संपत्ति मिली है आदर सत्कार मिला है ऐसी अवस्था में आज आप भजन ध्यान करते हैं तो पहले भोगे हुए भोग की याद आती है मनोरंजन में भोग की याद आती है तो उसकी ज्यादा याद आती है तो बहुत तल्लीनता हो जाती है उसमें उस वृत्ति को हटाओ तो हटती नहीं जल्दी तो वो जो भोगा शक्ति है वो क्या काम करती है अब ध्यान देकर सुने जिस उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ वो अब कह रहा हूँ वो भोगा शक्ति भीतर होने से आपका निश्चय है पूरा कि वो अभी अवस्था नहीं है वो भोग अवस्था नहीं है अभी ऐसा पूरा निश्चय है परंतु मन ऐसा चिपकता है कि जैसे जन कोई भोग ही भोग रहे हैं जैसा तो अब भोग भोग रहे ऐसा चिपकता है निश्चय भी है वो है नहीं वो अवस्था अभी नहीं है तो पूर्व में कभी थी कभी भोग भोगा उस समय थी अभी नहीं है ये उसके अभाव का निश्चय भी साथ है और उसमें आसक्ति भी अभी बरोबर है। और एक दूसरी बात तीसरी बात और होती है ध्यान देने तीसरी बात ये होती है चाहे प्रत्यक्ष भोग भोगो और चाहे भोग की स्मृति करके और उसमें सुख लो दोनों का परिणाम एक होता है ध्यान दे रहे ये बात सोचिए तीसरी बात ध्यान दिया कि नहीं परिणाम जैसे भोग भोगने से संस्कार पड़ते हैं ऐसे भोगों का तदलील और चिंतन करने से वैसा ही असर पड़ता है वही फल होता है वही बंधन होता है फर्क नहीं है। अब भोग भोगा उस समय भोग थे अब भोग नहीं है ये फर्क है फर्क होते हुए भी आपकी बुद्धि तल्लीन हो गई तो दोनों का परिणाम एक होगा अगर बुद्धि नहीं लगे तो परिणाम नहीं होगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। देखो विशिष्ट बात बताओ ये विशिष्ट बात याद रखना तीन बात है अब एक विशिष्ट और वो भी याद है आपको केवल दृष्टि बात होकर ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते संगा संजायते ज्ञान कामार कामार क्रोधो भी जायते क्रोधात् विसंगोः संगोः स्मृति स्मृति प्रसाद स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये क्या हुआ कि ध्याय तो विषयान ध्यान करने से राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इन्द्रियेषु शरणं राग द्वेष नहीं है विषयों का आचरण करता है तो प्रसाद की प्राप्ति प्रसाद के सर्व दुखाना मानी अबुद्धि परिवर्तित वहां बुद्धि नाशा परिश्रम नहीं होगा तो राग द्वेष रहित भोगों के आप भोगने से भी परमात्म तत्व की प्राप्ति बुद्धि की प्राप्ति और भोग का ध्यान करने से पतन कितनी विचित्र बात है विषयान ध्याय तो विषयान और राग द्वेष विषयान विषयान इंद्रिय शरण विषयान दोनों पद विषयान है वहां जो आचरण करता है और वह ध्यान करता है, पर ध्यान करते आसक्ति तो पुनस्थिति, और आचरण करते हुए भी प्रसाद की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति। सिद्ध क्या हुआ? आसक्ति पुरुष चाहे चिंतन करो चाहे आसक्ति पुरुष भोगो, दोनों का फल एक होता है। आसक्ति रहित होने पर चाहे भोग भोगो और चाहे त्याग करो, दोनों का फल एक होता है। तो मन की जो आसक्ति है चिपकना है, उससे बाधा लगती है। अब इसी सार बात बताऊं, पदार्थों में जो आसक्ति प्रियता है, वो प्रियता अभाव होने पर भाव होने पर एक फल करती दोनों ही। चाहे विषयों का भोग करो और चाहे भगवान का चिंतन, भोगों का चिंतन करो, आसक्ति एक है तो उसका फल एक होता है। तो अब आदमी क्या करे? अब एक बात और बताऊं, ध्यान दे देगी। सत्यता बुद्धि है ना, अभी पदार्थ नहीं है, अभी भोग नहीं है, ऐसी अवस्था में भी अगर भोगों का चिंतन होता है तो अभाव होते हुए भी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वही होती है, बंधन वही होता है, दुर्दशा वही होती है। स्त्री का आसक्ति को चिंतन है, वीर्यपात तक हो जाता है। आप बताओ, उसमें मन है नहीं और गुण जो संभोग करते हुए देख हो जाए, चिंतन हो जाए, उससे वही दशा होती है जो सुनो करने से होती है। स्वप्न होता है, स्वप्न दोष होता है नहीं परंतु स्वर्ग से भी प्रतिशा है। तो वह पदार्थ नहीं है पर फल वही होता है, फल वही होता है। ऐसे पदार्थ का होना न होना इतना इतना महत्व नहीं है, किन्तु आसक्ति का न होना उसका महत्व है। ये सार निकला। प्रियता वैसी है तो उसका फल वही होगा, और असत्य है बिल्कुल है ही नहीं, निश्चय है कि यह हस्ती नहीं है, यह पदार्थ नहीं है, बिल्कुल इसमें निश्चय में फर्क नहीं, अनुभव है साहब। परंतु चिंतन करते हुए भोगों में जो सुख होता है वही सुख चिंतन करने में होता है, संबंध जन्य सुख वो भी होता है। इस बार यही संस्पर्श जब होगा, चाहे वो सारू भोग हो और चाहे न हो, दुख ही होने होते आद्यंत बंत कौन थे, न थे सो रमते बुधा, बुधा न रमते, न रमते में तात्पर्य है। रमन उसमें करोगे तो भोग हो चाहे मत हो एक फल हो जाएगा, और रमन नहीं करोगे तो चाहे भोग लो कुछ असर भी होगा, ये तात्पर्य हुआ। अब इससे क्या अर्थ निकला कि पदार्थ है कि नहीं है इसका मतलब नहीं है। न होते हुए भी चिंतन से वही फल, और होते हुए भी उसे भोगने से वही फल। अब करना क्या चाहिए साधक को, वो करने की बात बताता हूँ। करना ये चाहिए कि वो नहीं है इसका निश्चय करना चाहिए। जैसे आपके चिंतन करने से भोगाशक्ति हुई, उसमें आपकी चित्त की तल्लीनता होगी, इंद्रियों में विकार से हो जाएगा, है नहीं होगा पर विकार हो जाएगा। तो ये जो विकार होता है इसमें साधक की असावधानी है। अब उस सावधानी क्या रहनी चाहिए कि जब कहीं विषयों का चिंतन हो तो उस समय कहेगा ये नहीं है, अभी नहीं है, ना ना है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, पागल की तरह आदमी करे कि ना 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 ना, ऐसे करो ना ना नहीं है, है ही नहीं, यहाँ यहाँ हस्ती है ही नहीं, यहाँ पदार्थ है ही नहीं, ना ना नहीं है। तो अभाव का निर्णय को पक्का हो जाएगा, फिर वास्तव दर्शन नहीं हो वैसा। ऐसे संसार का अभाव है, क्यों पहले अभाव था किसी पर, पहले अभाव था और फिर अंत में अभाव होगा, अभी बीच में भाव है। तो आधा मन से यह नास्ती वर्तमान ही बिदत्ता था, जो आदि और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है, और नहीं होता हुआ भी करता है। तो ऐसे पहले नहीं था, पीछे नहीं होने पर भी नहीं होता आसक्ति होती है संसार में। कैसे होती है कि जैसे मन से भोगों की इच्छा होती है तो भोग नहीं है पर तो आसक्ति होती है, पसंद वही होता है। इस वास्ते नहीं है ये निर्णय बड़ा जोरदार होना चाहिए। तो जब कभी भोगों का चिंतन हो तो नार भी अलग ना 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 नहीं है, ये नहीं है। और सब लोग कहते ना है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं। अगर ये अभाव का निर्णय पक्का हो जाएगा वो दशा नहीं होगी, करके देख लेना ये नहीं है। परंतु आप जोर जोर परमात्मा प्राप्ति हो जाए चिंतन करते हैं, जोर लगाते हैं, परंतु इनकी सत्ता का अभाव आप जोर नहीं लगाते। जोर लगा तो ये अभाव सत्ता का अभाव स्पष्ट नहीं है, ये नहीं है। प्रत्येक जो विषय नहीं है चिंतन होने से विकार हो जाते हैं, बीजी पास हो जाता है, कितनी उचित बात है नहीं। परंतु नहीं का आप अनुभव नहीं करते हैं, अभार नहीं हुई याद करती है, इसको गौण सा मत दो, इसको मुख्यता दो कि ना 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 है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है ही नहीं। ये निर्णय हो जाएगा बहुत फायदा होगा, ये उपाय है। ऐसे ये दीखता है जितना ही अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं, अरे अव्यक्त मिलना नहीं, पहले नहीं था पीछे नहीं बीच में दिखता है, क्या पिलाप इसमें से ही क्या। तो नहीं का ही निर्णय करना है। इस वास्ते नहीं के निर्णय का नाम भी योग है और है का प्राप्त करने का नाम भी योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुख संयोग का वियोग हुआ ये भी योग है। समत्व योग उसे समता नाम योग है। सम है परमात्मा का स्वरूप निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म, तो समता हो वो भी योग है और दुख संयोग वियोगम उसका वियोग भी योग है। तो संसार के सत्ता के अभाव का नाम भी योग और परमात्मा की सत्ता का नाम भी योग, दोनों का फल एक होता है। इस वास्ते अलग अलग होने पर ही फल एक होता है। खास करके सत्ता के अभाव का निर्णय पक्का नहीं है, ये खास मूल कारण है। अरे वो भक्ति चलो से ज्ञान चलो सत्य परमात्मा की निश्चय की बात एक है। नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुता जी महाराज द्वारा पुरुष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।